नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार का निर्णय, पटना से गयाजी, आरा, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय के बीच रैपिड रेल सेवा शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इंटरनेट पर युवाओं को उकसाने के मामले में बिहार समेत 10 राज्यों में एक साथ छापेमारी की। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए एक समान शुल्क लिया जाएगा। और मौसम विभाग का गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिले में आज अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट। भोजपुर, बक्सर, सारण, सीवान तथा किशनगंज जिले में भी भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पटना से गयाजी, आरा, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय के बीच रैपिड रेल सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS बनेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को दी गई है। इस पर 31,59,00,000 रूपये खर्च होंगे। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि प्रमुख शहरों के बीच परिवहन व्यवस्था को तेज करने के लिए ये फैसला लिया गया है।
ये चार कॉरिडोर हैं, पटना गयाजी कॉरिडोर पहला है, दूसरा है पटना एयरपोर्ट बेगूसराय कॉरिडोर, तीसरा है पटना हाजीपुर से प्रस्तावित सोनपुर एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर कॉरिडोर और चौथा कॉरिडोर है पटना एयरपोर्ट से आरा कॉरिडोर। तो ये चार कॉरिडोर के लिए रैपिड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS की स्वीकृति दी गई है। अभी यह यूपी में कुछ शहरों को कनेक्ट करता है।
एक अन्य फैसले में राज्य सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत बेरोजगारी भत्ता यानी मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना को 2026-27 से मार्च 2031 तक लागू रहने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि इसके तहत वर्ष 2026-27 के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च करने की सहमति दी गई है।
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को अगले 5 वर्षों वित्तीय वर्ष 26-27 से 30-31 तक विस्तारित करने तथा इस पर वित्तीय वर्ष 26-27 में कुल 300 करोड़ रुपए व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट ने प्रदेश में दूध उत्पादकता के साथ ही गुणवत्ता सुधारने के लिए बल्क मिल्क कूलर, दूध मिलावट जांच मशीन और डाटा प्रोसेसिंग मिल्क कंट्रोल यूनिट लगाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। इसके तहत राज्य में 1000 से अधिक डाटा प्रोसेसिंग मिल्क कंट्रोल यूनिट और 80 दूध मिलावट जांच मशीन लगाई जाएगी। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही के अंकेक्षण के लिए सामाजिक अंकेक्षण सोसायटी के गठन की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने कुल 22 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने इंटरनेट पर युवाओं को उकसाने के मामले में बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और गुजरात समेत 10 राज्यों में एक साथ छापेमारी की। ये छापेमारी ISIS और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों की विचारधारा को बढ़ावा देने और सरकार के खिलाफ साजिश की जांच के क्रम में की गई है। इस दौरान टीम ने कई डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए हैं। इस मामले में अब तक 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 1 वर्षीय और 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए एक समान शुल्क लिया जाएगा। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने इस संबंध में यूनिफॉर्म ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशंस 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों में वर्ष 2018 से लागू चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CDCS के पुराने नियम समाप्त हो गए हैं। हालांकि बिहार कृषि विश्वविद्यालय, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, नालंदा खुला विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय पर ये नियम लागू नहीं होंगे। इधर राज्यपाल ने अंगीभूत महाविद्यालयों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के तबादले के लिए पोर्टल आज से खुल जाएगा। इसके माध्यम से शिक्षक मनपसंद विद्यालयों में स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने गोपालगंज में पत्रकारों से कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार ने मनचाहा स्थानांतरण की नीति बनाई है। उन्होंने कहा कि तबादले के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के औचक निरीक्षण के बाद दो चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पटना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि निरीक्षण के क्रम में एक डॉक्टर निर्धारित समय पर ड्यूटी पर नहीं पहुंचे थे, जबकि दूसरे डॉक्टर पर मरीज को जांच के लिए अपने निजी क्लिनिक भेजने का आरोप है।
मैं गया था एलएनजेपी, वहाँ पे एक डॉक्टर थे, नहीं आए। 3 बजे तक उनकी ड्यूटी, वो गया था 3 बजे तक नहीं आए, 2 बजे तक ही उन्हें जाना चाहिए था। फिर हमने उन्हें फोन भी किया तो वो अपना रीजन बताने लगे, तो उसमें मैं कार्यवाही कर रहा हूँ, वो अपना शो कॉज देंगे। और हमारे डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने प्रिस्क्रिप्शन पे लिख दिया अपने निजी क्लिनिक में कि वहां जाकर आप जांच करा लीजिए, तो उन पे भी कार्यवाही करेंगे।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ खातों में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खाते में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। उत्तर बिहार में जहां अच्छी बारिश हो रही है, वहीं दक्षिण बिहार में कम बारिश के चलते उमस और गर्मी का असर एक बार फिर बढ़ गया है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि भोजपुर, बक्सर, सारण, सीवान, पूर्वी चंपारण और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश का पूर्वानुमान है।
राज्य के गोपालगंज एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेज गर्जन वज्रपात तथा अत्यधिक भारी वर्षा के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भोजपुर, बक्सर, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, सारण एवं सिवान जिलों में मेज गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों अररिया, अरवल, औरंगाबाद, भभुआ, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सुपौल जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, अररिया, सुपौल और पूर्णिया जिले में भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। शेष स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई। सबसे अधिक किशनगंज के चरघरिया में 178.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पार्टी मुख्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पार्टी की संगठनात्मक मजबूती के लिए कई निर्देश दिए हैं। वहीं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने प्रदेश की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। पार्टी की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार 12 प्रदेश उपाध्यक्ष, 38 प्रदेश महासचिव और 74 प्रदेश सचिव मनोनीत किए गए हैं। विधान पार्षद नीरज कुमार को फिर से पार्टी का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है, जबकि 9 अन्य व्यक्तियों को प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सोने के आभूषणों के बदले दिए गए ऋण में इस वर्ष मई महीने में लगभग 70% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। मई के अंत तक ऐसे ऋण बढ़कर लगभग 3,30,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। रिजर्व बैंक ने बताया कि खुदरा ऋण में भी लगभग 19.5% की वृद्धि हुई है। वहीं कृषि और संबंधित क्षेत्रों को दिए गए ऋण में लगभग 18% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि उद्योग और सेवा क्षेत्र में ऋण वृद्धि की रफ्तार धीमी रही। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 10 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड श्रृंखला में फिलहाल 2-0 से आगे है और श्रृंखला में बने रहने के लिए भारत को यह मैच जीतना आवश्यक होगा। इससे पहले तीसरे मैच में भारत को इंग्लैंड से 125 रन से हार का सामना करना पड़ा था। रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता के आगामी सत्र में बिहार अपने घरेलू मैच राजगीर क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव जियाउल आरफीन ने बताया कि पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में पुनर्निर्माण कार्य जारी रहने के कारण राजगीर मैचों की मेजबानी करेगा। इसके लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी गई है। रणजी ट्रॉफी एलिट ग्रुप कैलेंडर के अनुसार बिहार उत्तर प्रदेश के खिलाफ पहला मैच 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक और दूसरा मैच मौजूदा रणजी एलिट चैंपियन जम्मू कश्मीर के खिलाफ 17 जनवरी से 20 जनवरी तक खेलेगा, जबकि तीसरा मुकाबला 24 फरवरी से 27 फरवरी तक विदर्भ के खिलाफ खेला जाएगा। भोजपुर जिले के शाहपुर में कथित पुलिस मुठभेड़ में भरत तिवारी की मौत मामले की जांच तेज हो गई है। पुलिस ने मृतक के परिजनों का बयान बतौर साक्ष्य न्यायालय में अंकित कराया है। भरत तिवारी की मां भाई समेत 3 लोगों के बयान अंकित कराए गए हैं। इधर न्यायिक आयोग ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में विशेष छापेमारी अभियान चलाकर पुलिस ने भारी मात्रा में नेपाली शराब के साथ 19 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से चोरी की 4 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी, पिकअप वैन, मोबाइल और कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। नवादा केंद्रीय विद्यालय का संचालन शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कन्हाई नगर स्थित राजकीय कृत इंटर विद्यालय परिसर में होगा। जिलाधिकारी रवि प्रकाश ने बताया कि प्रथम चरण में कक्षा 1 से 5 तक पठन पाठन संचालित होगा। मधुबनी जिले के फूलपरास थाना क्षेत्र से पुलिस ने 13 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसलों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है, पटना से सूबे के 4 शहरों में रैपिड रेल सेवा शुरू होगी। दैनिक जागरण ने अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े विवाद पर लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर संग्राम, हॉर्मुज में 3 जहाजों को निशाना बनाए जाने के बाद अमेरिका ने किया हमला। दैनिक भास्कर लिखता है, बिहार में 946 स्कूल बढ़े पर दाखिला 4,37,037 कम हुआ। प्रभात खबर ने लिखा है, फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले 3,035 शिक्षकों की जाएगी नौकरी, वेतन भी सूद समेत वसूला जाएगा। आज अखबार लिखता है, बिहार में 1,497 संदिग्ध फार्मासिस्टों का पंजीकरण रद्द। राष्ट्रीय सागर का शीर्षक है, 2027 में नीट परीक्षा 6 दिन चलेगी, कंप्यूटर बेस्ड होगी परीक्षा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार का निर्णय, पटना से गयाजी, आरा, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय के बीच रैपिड रेल सेवा शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इंटरनेट पर युवाओं को उकसाने के मामले में बिहार समेत 10 राज्यों में एक साथ छापेमारी की। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए एक समान शुल्क लिया जाएगा। और मौसम विभाग का गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिले में आज अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट। भोजपुर, बक्सर, सारण, सीवान तथा किशनगंज जिले में भी भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।